ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कुंभ मेले से लौट रहे चार नेपाली नागरिकों की भारत के गोरखपुर में वाहन दुर्घटना में हुई मौत। देश और जनता की चाह के मुताबिक राज्य संरचना प्रदेशों और स्थानीय तहों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। म्यागदी की धावलागिरी गांव पालिका में 155 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ शुरू। और हमास ने आज अन्य 6 इसराइली बंधकों को किया मुक्त। अब समाचार विस्तार से। कुंभ मेले से लौट रहे चार नेपालियों की भारत के गोरखपुर में वाहन दुर्घटना में मौत हो गई है और अन्य 6 घायल हैं। बीती रात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिंक रोड पर बीती रात ट्रैक्टर और नेपाली नागरिक सवार स्कॉर्पियो के आपस में टकराने से ये हादसा हुआ। हादसे में सप्तरी की कंचनरूप नगर पालिका 7 के 65 वर्षीय परशुराम चौधरी, 64 वर्षीय लीलावती चौधरी वार्ड नंबर 5 की 55 वर्षीय हरिहर बती यादव और उनकी भाभी सुनसरी कुशहा गांव पालिका की समतोलिया देवी यादव की मौत हो गई। ये जानकारी कंचनरूप नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष समानंद चौधरी ने दी। हादसे में घायल हुए चालक सहित 6 लोगों को गोरखपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रथम महिला राधिका शाक्य द्वारा लिखित आत्मकथा करुणा का आज लोकार्पण हुआ है। पुस्तक में शाक्य ने वर्तमान प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन नेकपा एमाले के नेता केपी शर्मा ओली के साथ विवाह होने के बाद के अनेक प्रसंगों से लेकर अपने बचपन, पढ़ाई, नौकरी लगायत पहलुओं का जिक्र किया है। काठमांडू के राष्ट्रीय सभा गृह में आयोजित समारोह में करुणा पुस्तक का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि विगत के संघर्षपूर्ण समय में किए गए विभिन्न संघर्षों और बलिदानों के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई है। उन्होंने कहा कि देश की आवश्यकता और जनता की चाह के मुताबिक राज्य संरचना प्रदेशों और स्थानीय तहों की संख्या लगायत को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जनकपुर धाम में शुरू हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दिख रही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ चिकित्सकों के छाता संगठन शिमोन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में 50 कार्यपत्र और 15 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सक डॉ अशोकानंद मिश्र ने ये बात बताई। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि माओवादी अब अपने ही वर्ग में लौटकर स्थानीय तह से ही समाजवाद का अभ्यास करने का अभियान में आगे बढ़ी है। माओवादी केंद्र पार्टी मुख्यालय द्वारा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि समाजवादी अर्थतंत्र, संस्कृति और शैली की शुरूआत स्थानीय तहों से ही होना जरूरी है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। आज काठमांडू में आयोजित सुदूर पश्चिम कानून समाज के प्रथम अधिवेशन में गृहमंत्री लेखक ने कहा कि लोकतंत्र काया विकल्प लोकतंत्र ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में संविधान का अभ्यास करने के दौरान दिखाई पड़े सबल और दुर्लभ पक्षों का विश्लेषण कर संविधान संशोधन की तैयारी हो रही है। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास निर्माण के कामों में क्रियाशील है। आज बांगलुंग में आयोजित कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 बड़े दल मिलकर बने सरकार वर्तमान सरकार विकास निर्माण के कामों को प्रमुख प्राथमिकता देकर उसी के मुताबिक काम कर रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G।
नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा संचालित खोप माध्यमिक विद्यालय ने आज अपनी रजत जयन्ती मनाई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण बिजुक्छे ने कहा कि देशभर के शैक्षिक संस्थाओं को अपने विद्यार्थियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने की जरूरत है। इस बात का जिक्र करते हुए कि सरकार को खोप विश्वविद्यालय संचालन के स्वीकृति देने में देरी नहीं करनी चाहिए, अध्यक्ष बिजुक्छे ने कहा कि खोप विश्वविद्यालय सिर्फ भक्तपुर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जरूरत है। धनुषा में विपन्न किसानों को सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकृति पर आधारित कृषि खाद्य परियोजना आज से शुरू हुई है। आगामी 4 सालों तक संचालन होने वाले परियोजना गणेश मान चारनाथ नगरपालिका, शहीद नगर नगरपालिका और जनक नंदनी गांव पालिका सहित अन्य 3 पालिकाओं में क्रियान्वयन किया जाएगा और परियोजना से 5,000 सीमांतकृत परिवारों को खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का लक्ष्य है। बता दें कि परियोजना से 200 किसानों का समूह गठन करके उसमें आबद्ध सदस्यों को ब्यू बीजन लगाकर कृषि सामग्री वितरण किया जाएगा। मुगलिंग पोखरा सड़क विस्तार अंतर्गत तनहू के सदर मुकाम दमौली बाजार में पीच करने का काम शुरू हुआ है। मुगलिंग पोखरा सड़क योजना पूर्वी खंड के अधिकांश स्थानों में पीच संपन्न होने के लंबा समय पश्चात दमौली बाजार में पीच का काम शुरू हुआ है। दमौली स्थित ब्यास नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के बाग बाजार में शुक्रवार से पीच का काम शुरू हुआ है। ये जानकारी पूर्वी खंड के इंजीनियर विष्णु प्रसाद पांडे ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमास ने इसराइल के 3 बंधकों को आज रिहा कर दिया है। इस बात की पुष्टि खुद इसराइल की सेना ने की है। इसराइल की सेना ने बताया है कि उसके सैनिकों ने हमास द्वारा रिहा किए गए 3 बंधकों को प्राप्त कर लिया है और उन्हें वापस इसराइल में लाया जा रहा है। इसराइली की सेना ने कहा कि तीनों का प्रारंभिक चिकित्सा मूल्यांकन किया जाएगा। जिन इसराइली बंधकों को आज हमास ने रिहा किया है उनमें उमर बेंकर्ट, उमर शेव टोब और एलिया कोहेन शामिल है। बताया जाता है कि तीनों बंधकों को नकाबपोश सशस्त्र हमास लड़ाकों द्वारा नुसेरात के केंद्रीय शहर में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के सामने मंच पर लाया गया था। जानकारी दें कि इससे पहले दिन में दक्षिणी गजा शहर रफा में 2 अन्य बंधकों को रिहा कर दिया गया है। उनकी पहचान ताल शोहम और एवेरा मेंगिस्टू के रूप में की गई है। वहीं 6ठे बंधक को कुछ समय में रिहा किया जाना है। बता दें कि आज रिहा हुए ओंकर बेंकेट, उमर स्टोब सेव और एलिया कोहन के हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को अगवा कर लिया था। इसी दिन हमास ने इसराइल पर हवाई हमला भी किया था जिसमें 1200 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद इसराइल ने गजा में हमास पर हमला बोल दिया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुंभ मेले से लौट रहे 4 नेपाली नागरिकों की भारत के गोरखपुर में वाहन दुर्घटना में हुई मौत। देश और जनता की चाह के मुताबिक राज्य संरचना, प्रदेशों और स्थानीय तहों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। म्यागदी की धावलागिरी गांव पालिका में 155 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ शुरू और हमास ने आज अन्य 6 इसराइली बंधकों को किया मुक्त। रेडियो नेपाल से रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।